Om Shanti. Welcome back to the session, and we are honored today to have respected Kavita Didiji with us. She has done her BA and LLB from Punjab University in 1991. She is the executive member of Jurist Wing under Rajyoga Education and Research Foundation of Brahma Kumaris. She is at present the center in charge of Rajyoga Center in Sector 43A, Chandigarh. Kavita Didi is one of the senior faculties in Mount Abu for Rajyoga retreats, and she has extensively traveled throughout India to speak on the topics like positive lifestyle, stress management, relationship management, happy family life, to name a few. Didi has led several national awareness campaigns like Sadbhavana, Yuva Yatra, business to serve the society, and also many awareness campaigns on drug and environment, Gram Vikas Yatra, etc. from the year 1993 until 2010. She has initiated personality development course for schools and college going students in Chandigarh since 1993. And today, I request Didi to share with us her wisdom on experiencing the divine. And over to respected Kavita Didi. If any kids are here, they might go to their session in reception room number 1 in training section. Thank you.
Om Shanti. All are comfortable with Hindi. परमात्मा का परिचय देना है तो हिंदी में ज्यादा ठीक रहेगा. एक सबसे अच्छी बात
भी हो रहा है, जिनको चाहिए.
अच्छा ठीक है. एक सबसे अच्छी बात ये है कि भगवान के लिए, परमात्मा के लिए बात प्रसिद्ध है कि उन्हें कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है. कोई भी लैंग्वेज नहीं आती. कैसे आएगी? क्योंकि लैंग्वेज समझने के लिए, उसको फीड करने के लिए ब्रेन की जरूरत होती है, और ब्रेन शरीर में होता है ना. तो ब्रेन विद इन बॉडी, तो वो कैसे उस बॉडी में, हम उस ब्रेन में हम चीजें ये सेव करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, फीड करते हैं. तो भगवान के पास कोई शरीर नहीं है, उनके पास सिर्फ वाइब्रेशंस पहुंचते हैं, भावनाएं पहुंचती हैं. कहते मूक प्रार्थनाएं जल्दी पहुंचती हैं ईश्वर तक, क्योंकि मुक्त होती हैं शब्दों के बोझ से. जिसके शरीर में प्रवेश करेंगे वो उसी का ब्रेन यूज करेंगे. तो अब तक समझ में आता गया कि सब धर्म में बहुत से धर्म स्थापक आए, कहीं दरवेश, कहीं सूफी संत, कहीं पंजाब के गुरु, कहीं पर जुडाइज्म में, कहीं इस्लाम में, मुस्लिम्स में, जैनिज्म में, बौद्धिज्म में. तो जो जो धर्म स्थापक, जो जो उनके लीडर्स हुए हैं, तो वो जो भाषा जानते थे परमात्मा ने उसी को यूज किया, क्योंकि उनके पास अपनी कोई भाषा नहीं है. इसीलिए भगवान नीड्स नो फॉर्मेलिटी. आप उसे किसी भी भाषा में याद कर सकते हैं तो उसी भाषा में जवाब देगा. आप इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में, बहाई, कोई सूफी, कोई फारसी, कोई अरबी, किसी भी भाषा में आप उन्हें याद करेंगे तो उसी भाषा में हम रिप्लाई मिलेगा, उत्तर मिलता है उसका. अब खास बात यह है कि जो सुबह आपने सेशन किया होगा वो था अपने बारे में, सोल कॉन्शियसनेस, सेल्फ रियलाइजेशन. और ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब हम सेल्फ रियलाइजेशन की बात करेंगे तभी हमें गॉड रियलाइजेशन होगा. उसके बिना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी लेवल पर खड़े होकर, हम हाथ जोड़कर या हाथ खोलकर या नीचे बैठकर या आधा बैठकर या टांगे पीछे मोड़कर या चौकड़ी लगाकर किसी भी पोस्चर में याद करें, परमात्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. क्योंकि वो शरीरों का पिता नहीं है, वो आत्मा का पिता है। इसीलिए आत्मा की रियलाइजेशन होना जरूरी है। हम आत्मा अमर अविनाशी हैं, इम्पेरिशेबल हैं। हम आत्मा उनसे कनेक्ट होते हैं और हम सबके पास अपना अपना मन है, बुद्धि है और संस्कार है, है ना। ये आपने पढ़ा। अब इसके साथ साथ खास बात ये है कि हमने पहले भी कहा गॉड नीड्स नो फॉर्मेलिटी। इसके लिए बड़ी प्रसिद्ध बात है एक, कि एक माँ अपने छोटे से बेटे को, 4 साल के बच्चे को रोज कहती थी कि बेटा चर्च में जाया करो, थोड़ा प्रेयर किया करो, भगवान को याद किया करो। वो देखो फादर रोज प्रेयर करते हैं, उनसे सीखो, आप भी ऐसा किया करो। तो वो कहता ठीक है, लेकिन जाता नहीं था। बिल्कुल रोड पार करके सामने चर्च थी, इस तरफ उसका घर था, तो उसे पता भी था, आवाज भी आती थी, लेकिन वो जाता नहीं था। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, माँ रोज कहती है, तो एक दिन उसको लगा चलो मदर रोज कहती है तो आज चला जाता हूँ। तो वो गया उस दिन, 4 साल का छोटा सा बच्चा, उसने फादर को देखा कि वो ऐसे करके और घुटने मोड़ कर आधा खड़ा होकर ऐसे सिर झुकाकर कुछ बोल रहे हैं, होठ हिला रहे हैं। उसने सेम कॉपी किया, वो उनके पास बैठा, उसने टांगे मोड़ी, आधा खड़ा हुआ, ऐसे किया, सिर नीचे किया और होठ हिलाना शुरू कर दिया। तो ध्यान तो जाएगा ना, फादर ने देखा एक छोटा सा बच्चा पास बैठकर ऐसे कर रहा है, तो वो देखते रहे और फिर अपनी प्रेयर करते रहे, जो भी हिम्स या जो भी भजन बोलते हैं वो बोलते रहे। तो थोड़ी देर में फिर उन्होंने देखा कि बच्चा भी कुछ होठ हिला रहा है, बड़बड़ कर रहा है, कुछ हिला रहा है। तो फिर उन्हें पूछ ही लिया कि बेटा क्या कर रहे हो। बच्चा पूछता फादर आप क्या कर रहे हो। तो वो कहते कि मैं तो प्रेयर कर रहा हूं। तो बच्चा कहता मैं भी प्रेयर कर रहा हूं। फिर थोड़ी देर में फादर ने पूछा बेटा क्या प्रेयर कर रहे हो आप। तो अगेन क्वेश्चन, आप क्या प्रेयर कर रहे हो। तो वो कहता कि मैं तो प्रेयर कर रहा हूं गॉड सेव मी फ्रॉम सिंस और ऐसे ऐसे कुछ बातें उन्होंने कुछ लाइन बोली अपने उसी शब्द की, हिम्स की, जो भी उनके वो रिसाइट करते हैं। तो उसने 2-4 लाइन बोली। अब बताओ तुम क्या प्रेयर कर रहे हो, फादर ने तो बता दिया। वो सोचने लगा कि मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ होठ हिला रहा हूं। तो उसने कहा मैं भी प्रेयर कर रहा हूं, मैं गॉड को कह रहा हूं, आप क्या कह रहे थे आपने बता दिया ना, अब मैं भी गॉड को कह रहा हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अगेन शुरू हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच, होठ ही तो हिलाने थे, तो वो हिलाता रहा। तो वो कहते ये क्या प्रेयर हुई, जस्ट ए बी सी डी बोल रहे हो आप तो। कहता फादर आपकी प्रेयर में भी इंग्लिश के यही 26 लेटर्स हैं, मेरी प्रेयर में भी यही है, आपने उसको जोड़ तोड़ के कुछ बना दिया, मैंने ऐसे ही रॉ मटेरियल दे दिया गॉड को, अपनी पसंद की बना लेना अपनी मर्जी की, अपनी पसंद की प्रेयर बना लेना जो आपको अच्छी लगे। तो गॉड नीड्स नो फॉर्मेलिटी, उसे समझ में आता है, उसे उस बच्चे की भाषा भी समझ में आती है, वो बच्चा क्या कहना चाहता है गॉड नोज। हम कुछ भी नहीं समझ आता तो हम क्या बोलते हैं, गॉड नोज, है ना। जो मैं नहीं समझा सकता, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं लेकिन नहीं बता पा रहा हूं और तुम नहीं जान पा रहे हो मेरे मन की बात, तो फिर क्या बोलते हैं, गॉड नोज। सारी चीजों के लिए डॉक्टर ने पूरा इलाज किया लेकिन हीलिंग होगी नहीं होगी कैसे होगी, गॉड नोज, वही करेगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हम अंत में भगवान पर छोड़ देते हैं। कितना ही अच्छा हो अगर हमें पहले ही भगवान याद आ जाए, तो हम अंत में छोड़ते हैं उस पर। अगर हम पहले ही उसको याद कर लें, पहले उसको सौंप दें, पहले सरेंडर कर दें, तो वो हमें सही तरीके से सही बात समझाएगा। ये हमारी और उसकी दोस्ती है, हमारी फ्रेंडशिप है। हर आत्मा परमात्मा की फ्रेंड है, हर आत्मा का रिलेशन परमात्मा के साथ है, लेकिन हमें याद बाद में आता है। हम जा रहे थे कहीं और थोड़ी देर में खबर मिली, वहां रास्ता था तो शहर में पता चला कि उस राउंड अबाउट के पास एक स्वेयर एक्सीडेंट हुआ है। छोटा सा 20-22 साल का सुंदर सा लड़का है और बड़ी महंगी सी बाइक है उसके पास। तो देखो कहां क्या चीज कनेक्ट होती है। तो वो उस बाइक से, बाइक की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा बचा ही नहीं होगा। जैसे उस बाइक की हालत थी, वो चौराहे पर एक साइड पड़ी थी, सब लोग देखते हुए निकल रहे थे और एक साइड भीड़ थी। उस लड़के को, उस बच्चे को कुछ लोग उठा रहे थे, कुछ ले जा रहे थे, कोई फोन कर रहा था ऐसे। अब वो इतनी महंगी बाइक होते हुए भी एक्सीडेंट से उसे बचा नहीं सकी। बहुत बढ़िया उसके पास मोबाइल फोन था। आज से 20 साल पहले भी वो 30-40 हजार का उसके पास मोबाइल फोन था, तो उसमें बहुत अच्छे उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट थे। एमएलए, एमपी, उनकी बेटी, उनका बेटा, वहां के फेमस हॉस्पिटल के जो सीनियर डॉक्टर है, उसका सीएमओ है, उसका डायरेक्टर है, किसी कॉलेज का प्रिंसिपल है, तो बड़े डॉक्टर्स, बड़ा मिनिस्टर, कोई बड़ा एमपी, ये बहुत अच्छे अच्छे लोगों के नंबर उसके पास, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि उसका फादर खुद बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था। लेकिन फोन को लॉक लगा हुआ था, कोई काम नहीं आया। बच्चा बेहोश था, वो उसको फोन भी यूज करने के काबिल नहीं था। ऐसे में भी भगवान अपना काम कैसे करता है। उसको जो ले जाने वाले थे, बचाने वाले थे, अब कोई भी काम नहीं आ रहा जो उसने सोचा था, जो इसके नंबर उसने रख रखे थे कि वो काम आएंगे, वो काम नहीं आए। वो बढ़िया बाइक, बढ़िया लोग उसके काम नहीं आए। उसके काम कौन आए? जिनको भगवान ने भेजा। खरबूजा बेचने वाला, आइसक्रीम बेचने वाला, ऑटो रिक्शा वाला, उधर से गुजरने वाला, बड़ी गाड़ियों वाले तो निकल गए फटाफट, छोटा कोई टू व्हीलर वाला, तो वो लोग 2-4-5 रुके, उसको ऑटो रिक्शा में डालकर लेकर गए। किसी ने ब्लड डोनेट किया, किसी ने सिग्नेचर किया, किसी ने उसके फादर को बुलाया और हॉस्पिटल में वो लोग गए। और इंटरेस्टिंग बात जो पता चली कि वो लोग कौन थे, आसपास का रहने वाला ही था वो लड़का, वो लोग वो थे जिनसे इस बच्चे ने कभी भी सामान लिया, कभी भी कोई फ्रूट खरीदा, कभी भी आइसक्रीम खरीदी, तो उसने कभी मोल भाव नहीं किया था। उन्होंने भी 20 रुपए बोला तो 20 रुपए, 50 बोला तो 50, 100 बोला तो 100। उसके माइंड में एक सेटिंग थी ये कि बड़े बड़े शोरूम्स में, बड़े बड़े मॉल्स में तो हम मोल भाव कर नहीं पाते हैं, और इन गरीब साधारण लोगों के साथ हम 10 रुपए से 5 कर लो, 20 से 12 कर लो, ऐसे करते रहते हैं। तो वो इनके साथ ऐसा कभी नहीं करता था, और वही लोग उसके काम आए। भगवान ने भेजे तो वही लोग भेजे। तो जब जहां अपनी प्लानिंग फेल हो जाती है, जहां अपने अपने कॉन्टेक्ट, अपने लोग, अपना काम नहीं आता, तो वहां भगवान की प्लानिंग चलती है। उसकी प्लानिंग कभी कभी ऐसे लगता है कि थोड़ा मुश्किल है फॉलो करना, लेकिन आखिर काम वही आती है, स्ट्रांग वही होती है। तो इसीलिए आज भगवान से दोस्ती करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, वो थोड़ी सी बातें हम करेंगे इस सेशन में, क्योंकि ये भी एक लंबा टॉपिक है, हो सकता है इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको मिलेगा। बड़ी बात ये है कि जैसे हम आत्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, ऐसे परमात्मा पिता भी निराकार ज्योति स्वरूप है, और हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय में उसको इसी रूप में स्वीकार किया गया है। बहुत से पीर, पैगंबर, संत, महात्मा, गुरु, आचार्य ह्यूमन बीइंग दिखाई देने में, सुपर ह्यूमन बीइंग, देवता, डीटीज, डिवाइन पर्सनैलिटीज बहुत हुए हैं, लेकिन फिर भी आत्मा का पिता परमात्मा ही है। वो उनको हम देवी देवता कह सकते हैं, महात्मा कह सकते हैं, धर्म आत्मा कह सकते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा एक ही होता है और वो है हम आत्मा का पिता। हमारे शरीर बदलते हैं, हमारे लौकिक माता पिता बदलते हैं। लौकिक मीन्स जो अब फिजिकल पेरेंट्स हैं, लोकल जो हैं अभी, लोकल मीन्स लौकिक, तो वो जो अभी मिले हुए हैं, इसी जन्म में मिले हैं, वो बदलते रहते हैं, हर जन्म में बदलते रहेंगे, लेकिन मिलेंगे वही जिनके साथ आपके कर्म का हिसाब किताब है, मिलते वही हैं जिनसे कुछ लेना देना है, कुछ कर्ज लेना है, कुछ देना है। तो इसीलिए हम सभी जो अब याद करते हैं तो हम आत्माएं, हमारा पिता परमात्मा, उससे दोस्ती करना या संबंध जोड़ना इसलिए जरूरी है कि हमारे आज के नहीं, कई जन्मों से कनेक्शन उसी के साथ है। ह्यूमन बीइंग्स के साथ रिलेशन एंड कनेक्शन चेंज होते रहते हैं, और चेंज इतना होते हैं कि हम कभी हिम्मत रख भी ले ना, कोशिश कर ले कि ये मुझे बहुत पसंद है, अगले जन्म में यही मिलना चाहिए। पता नहीं आपके वहां है क्या नहीं है, लेकिन भारत के कुछ रीति रिवाज तो सब जगह पहुंचे हुए हैं। एक दीपावली से पहले एक व्रत आता है, उसे कहते हैं करवा चौथ, जानते हो ना? क्या मतलब होता है इसका? हाँ, यही वाला मतलब पूछ रही थी मैं। हस्बैंड की बेहतरी के लिए, पति देव के लिए शुभ कामनाएं करना हमेशा माताओं का ही काम होता है। बेटे के लिए वो करेंगी, पति के लिए करेंगी, भाई के लिए करेंगी, राखी है, कोई होई है, कोई ये है, करवा चौथ है, कोई ऐसे ऐसे। तो माताएं इसमें होशियार होती हैं, शुभ कामनाएं रखने में, व्रत करने में, दुआएं देने में, तो उन्हीं की ड्यूटी है ये। क्योंकि पहले नौकरी नहीं करती थी, घर में रहती थी, तो उनका ये फर्ज बनता था कि वो सबके लिए दुआएं करती रहें। तो एक जगह बुलाया गया, करवा चौथ की ना कहानी सुनाते हैं कुछ 3-4 बजे, उसके बाद शायद पानी पीते हैं वो, नहीं तो सुबह से पानी भी नहीं पीते हैं, मतलब इतना ताकि सख्ती थोड़ा भूखा रहे तो बंदे को याद रहे कि उसने शुभकामनाएं देनी है, दुआएं देनी है, तो याद रहता है फिर उसे। तो उसमें बुलाया गया तो कुछ आप पॉजिटिव बातें बताइए, कुछ सबसे इंटरेक्ट कीजिए। हमने कहा ठीक है। काफी अच्छा ग्रुप था, बहुत सज धज के माताएं बैठी थी, सब खूब बढ़िया कपड़े पहनकर। तो वहां 15-20 मिनट 25 मिनट उनसे बात करनी थी, तो मैंने उनसे पूछा भैया आप ये व्रत क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा भाई पता नहीं, वैसे हमारे बड़े पूर्वज कहते आए हैं कि 7 जन्म यही वाला पति मिले इसके लिए। तो मैंने हैरान होकर कहा 7 जन्म आप झेल लेंगे इसी पति को? ठीक है, इट्स ओके, आप चाहते हैं 7 जन्म यही मिले, ईमानदारी से बताना। वो सब चुप हो गए, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब ऐसा है कि पति पत्नी आपस में एक दूसरे से बहुत सेटिस्फाइड हों, ऐसा कहीं नजर आता नहीं है वैसे। पति पत्नी मींस जिसमें बहस होनी चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, ऐसा दिखता रहता है। क्योंकि हम भी देखते आए, अपने मम्मी पापा को देखा, पड़ोस में देखा, भाई बहनों को देखा, कोई भाई भाभियों को, इनको उनको, कईयों को देखा, तो ऐसा ही दिखता था। तो मैंने कहा चलेगा 7 जन्म यही आदमी मिले आपको हस्बैंड के रूप में? तो वो चुप हो गए एकदम। फिर एक ने हिम्मत करके कहा कि इट्स ओके, 7 जन्म यही मिले, क्योंकि 1 जन्म तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में और सेटिंग में ही चला जाता है। तो बाकी 6 जन्म थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे ना, एक ही बंदे को सिखा दिया, समझा दिया, तो थोड़ा उसके साथ फिर कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो ठीक रहेंगे बाकी 6 जन्म। नहीं तो हर बार नया बंदा मिलेगा, उसको फिर अपने अकॉर्डिंग चलाना। उसके साथ सेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग थोड़ा मुश्किल होती है, तो चलेगा कहते 7 जन्म फिर यही चलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसी रिलेशन में मिले ऐसा नहीं होता। व्यक्ति तो वही मिलते हैं, आत्माएं तो वही मिलती हैं, लेकिन कभी दोस्ती, कभी भाईचारा, कभी बेटा, कभी सास, कभी कुछ ऐसे अलग अलग रूप में मिलते रहते हैं। लेकिन परमात्मा के साथ हमारा रूप और ये भी नहीं बदला, हमेशा ही हम आत्माएं इस रूप में उसे याद करते रहे कि हमें तुम्हारी जरूरत है। बेशक हम उसको बहुत ऊंचा समझते आए, मैं निराकार ज्योति स्वरूप, आप निराकार ज्योति स्वरूप, हिंदुइज्म में उसको शिवलिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में याद करते हैं। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं भारत में, प्रसिद्ध हैं, और इसी तरह से कहीं नूर, हमारे मुसलमान भाई अल्लाह को नूर कहते हैं, कहीं प्रकाश, कहीं जेहोवा, अलग अलग रूप में अलग अलग नाम दिया गया, लेकिन कहीं लाइट जैसा पत्थर, कहीं अग्नि, है ना, पारसी में अग्नि जलाते हैं पारसी लोग, तो कहीं दीवा जलाते हैं, कहीं कैंडल जलाते हैं उसकी याद में। तो इस तरह से कहीं बोधियों का एक ग्रुप है जापान में, तो वो उसे चिंकोन सेकी कहते हैं। चिंकोन सेकी माना शांति दाता। तो वो एक 3 फुट का स्टैंड लेकर उस पर एक लाल सा पत्थर रखते हैं, उस पर ध्यान एकाग्र करते हैं, उसको कहते हैं चिंकोन सेकी। वो जहां भी जाते हैं सफेद रुमाल में उसको लपेट कर ले जाते हैं, कहीं भी बैठकर ध्यान करना तो अपनी हथेली पर रखते हैं और वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो इसके अलावा कहीं रामेश्वरम, कहीं अमरनाथ, ऐसे अलग अलग नाम दिए गए भारत के अलग अलग कोने में, कि देवताओं का भी वही पिता है, राम जी का भी वही ईश्वर है, गोपी कृष्ण जी का भी वही ईश्वर है, गोपेश्वरम कहा, तो ऐसा भी माना गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अलग अलग धर्म जाति संप्रदाय दूर दूर देशों में जहां जहां तक फैली ये खबर, जहां जहां तक ये पता लगा, वहां वहां एक चीज में तो हम एक जैसे हैं, जिसको कहते हैं सर्वमान्य, एक्सेप्टेड बाय, रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल। मैं ज्योति स्वरूप, वो ज्योति स्वरूप, ज्योत से ज्योत मिलेगी, दो सितारों का मिलन, उसी से हमें अपने आप को चार्ज करना है, उसी से शक्ति लेनी है। इस फॉर्म में हम भगवान को याद करते रहे। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी देहधारी को हम परमात्मा नहीं कह सकते। उसके माध्यम हो सकता है, वो मीडियम हो सकता है, उनसे दोस्ती कर सकते हैं कि उनके थ्रू पहुंच जाएं। जैसे राजा से मिलना हो तो राजकुमार से फ्रेंडशिप कर लो, है ना, तो उसे हमने राजकुमार से फ्रेंडशिप कर ली, सेनापति से कर ली, मंत्री से कर ली, तो वो फ्रेंडशिप कर ली उनसे ताकि हम उसके थ्रू उनसे मिल सके। तो ऐसे ही जितने भी संत महात्मा, गुरु आचार्य, जितने भी महान लोग हुए हैं, परिचय देने वाले, बताने वाले, ये वो लोग हैं जो परमात्मा से मिलने का अनुभव किया हुआ, खुद एक्सपीरियंस किया हुआ सहज रास्ता बताते हैं। कोई भी ये क्लेम करे कि मैं भगवान जैसी प्राप्ति सबको करवा सकता हूं, ऐसा नहीं होता। एक डेजी डिजाइनोस करके एक बहुत अच्छे संत हुए यूनान के, तो कहते सिकंदर जब निकले हुए थे विश्व विजय की यात्रा पर और कुछ कुछ देशों में और कुछ इलाकों में जब वो पहुंच गए थे, तो इसी तरह से वो लेटा हुआ है पत्थर पर उल्टा, तो उसका सेनापति कहता है कि देखो महान सिकंदर अलेक्जेंडर पधारे हैं, तो अलेक्जेंडर का तुम सम्मान करो, उठो। वो लेटा रहता आराम से, फिर वो कहता है तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा अगर तुमने उसका सम्मान नहीं किया, तुम उनके रिस्पेक्ट में नहीं उठे। आराम से लेटा हुआ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे सिर्फ ये एक मीडियम मिला हुआ है, क्या हुआ अगर ये अलग हो जाएगा तो। उसने संत ने, सन्यासी ने ये आंसर दिया, सेनापति को रोका और अलेक्जेंडर ने बात की। अलेक्जेंडर ने कहा कि आप जो भी चाहते हैं वो अच्छे से अच्छी चीज मैं आपको प्रोवाइड करने को तैयार हूं, अगर आप उठकर मेरी बात सुनेंगे तो मैं बहुत अच्छी से अच्छी चीजें, अच्छे से अच्छा गिफ्ट, बहुत बड़ी से बड़ी अचीवमेंट तुम्हें करा सकता हूं, अलेक्जेंडर ने कहा। तो वो कहते पूरा वादा करते हो अलेक्जेंडर, करवाओगे मुझे वो बड़ी से बड़ी अच्छी से अच्छी प्राप्ति, अच्छी से अच्छी अचीवमेंट? कहते यस। कहते फिर अपना घोड़ा हटाओ और मेरे रास्ते से हट जाओ, वो जो सूरज की रोशनी आ रही है ना उसको आने दो मेरे पास, तुम क्या दोगे जो आ रहा उसको भी रोक के खड़ा हो गया है। यानी जो प्राप्ति भगवान करा सकता है, चाहे नेचर के माध्यम से, चाहे वो अपनी डिविनिटी के माध्यम से, वो सिर्फ वही करा सकता है। ह्यूमन बीइंग उससे चार्ज होके थोड़ी सी चार्जिंग कर देगा। अब मैं आपको उतना ही चार्ज कर सकती हूँ जितना मैं चार्ज हूं, मैं सोर्स नहीं हूं, परमात्मा सोर्स है, वो लगातार देता है, सागर है, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता का सागर, और मैंने उससे जितना लिया उतना अपने वाइब्रेशन के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, अपनी एनर्जी का फ्लो करके मैंने उतना सा आपको दे दिया, तो बस उतना ही दे पाता है ह्यूमन बीइंग। तो इसीलिए कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी देवी देवता, संत महात्मा, गुरु आचार्य क्या नहीं हो सकता? परम आत्मा भगवान नहीं हो सकता। वो निरंतर देने वाला है, उसके देने में कहीं कोई विघन नहीं है, कहीं कोई शर्तें नहीं है, अनकंडीशनल देता है वो, है ना। आप प्यार से याद करो तो आतंकवादी को भी उतना ही देगा जितना एक संत को देगा। जिस वक्त उसने प्यार से उसको याद किया वो उस वक्त उसको एक जैसा ही देता है, वो भूल जाता है कि यह आतंकवादी है। इसीलिए हिंदू शास्त्रों में कहानियां बनी हुई है, कितने सारे असुरों को वरदान दे देता था, जो मांगते थे उसको दिल से प्यार से याद करके जो मांगते थे दे देता था। वो बाद में अपनी बुद्धि का यूज करके उसका क्या मिस यूज करेगा वो बाद में पता लगता था, लेकिन वो देने को तैयार है। नींद में भी आराम में भी वो हमारी चार्जिंग करता रहता है, जब हम उसको ना भी याद करें तो भी। एक खूंखार से खूंखार आतंकवादी है, कोई क्रिमिनल है, अगर 6-7 घंटे नींद करके उठा है ना, उठते ही उसको मारने का, किसी को काटने का, खत्म करने का, चिल्लाने का ऐसे थॉट नहीं आते। सोचो इतने में भी उसने उसकी चार्जिंग की है, तो वो अनकंडीशनल देता है। हर धर्म में उनको याद किया गया है, हर जाति संप्रदाय में याद किया गया है, फॉर्मेलिटी की उनको जरूरत नहीं है। किसी भी समय याद करे, किसी भी पोस्चर में बैठकर याद करे, नहा के याद करे, बिना नहाए याद करे, परमात्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो किन को देता है? आत्माओं को देता है। वो परम आत्मा आत्माओं का पिता है, उनको देता है। अब खास चीज ये है कि जो वो बनाना चाहता है, हर धर्म में उन्होंने उसके बहुत अच्छे अच्छे कुछ ना कुछ सिंबल्स बनाए हुए हैं कि तुमको इनकी तरह बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे सिंबल्स हैं। अब परमात्मा के लिए हम कह रहे हैं कि वो सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तिवान का मतलब कि जो वो दे सकता है वो कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। इसीलिए भगवान के लिए कहते हैं GOD, गॉड, जेनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। इट डिनोट्स हिज 3 डिवाइन एक्ट। दुनिया में स्थापना का कार्य, ऑपरेट करना, चलाना, पालना का कार्य, और जब बहुत खराब हो जाए, कुछ भी ना बचे उसमें अच्छा, तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम, डिस्ट्रक्शन का काम वही करता है। माँ अपने बच्चे को पैदा करती है, पालती है, बच्चा कपूत निकल गया, दुनिया और समाज के लिए खतरा बन गया है, वो चाहे तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है, लेकिन वो नहीं करती है। कोई भी माँ नहीं करती है। जितने भी धर्म स्थापक आए, धर्म की स्थापना की, धर्म की पालना की, वो धर्म अधर्म बन गए। धर्म के नाम पर लड़ाई, झगड़ा, खून खराबा शुरू हो गया, तो वो चाहे तो उस धर्म को खत्म कर देना, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। तो ये तीनों कार्य, जेनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, जेनरेट करना, ऑपरेट करना और डिस्ट्रक्शन का, ये तीनों काम सिवाय परमात्मा के कोई नहीं करता। इसीलिए क्या बोला उनको? गॉड, GOD, गॉड, ये कहा गया। इसका अर्थ है कि बहुत सारे जितने भी देवी देवता हुए हैं उनको हम छोटा जी लगा के गॉड गॉडेस बोलते हैं, लेकिन बड़ा जी लगा के नहीं बोलते हैं, यानी परम आत्मा आत्माओं का पिता। अब इसी तरह से हमने देखा बचपन में, हम एक चीज सुनते आए कि एक तरफ हम उस लाइट को, शिवलिंग को, उनको हम कह रहे हैं शिव भोलानाथ, एक तरफ हमने नीले रंग की मूर्ति देखी, नीले रंग की चित्र या मूर्ति, और यहाँ से गंगा जी निकल रही है, और यहाँ पर तीसरा नेत्र है, नीला रंग है, गले में सांप है, और क्या सिम्टम्स हैं? मृग छाल नहीं, शेर की छाल पहनी हुई है, और यहाँ चंद्रमा है, बाकी निर्वस्त्र है, बाकी कपड़े ही नहीं पहने हुए हैं, और बैठे हैं बर्फ के पहाड़ पर कैलाश में, उनको भी हम भोलेनाथ कह देते थे। तो हम जब यहां आकर क्लास करने लगे और उस दिन हमें बात समझ में आई, तो मुझे याद है मैं 10th क्लास में थी 1984 में। उसके बाद मैंने कितनों को जाके बताया, हर मंदिर के पुजारी को, पंडित जी को, अंकल आपको पता है ये जो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग है, ये तो शिव बाबा है, भोलेनाथ, और ये जो है ये शंकर जी है, महेश्वरा। वो कहते बेटा इसमें क्या फर्क है? अब मैं सीख के गई थी ब्रह्मा कुमारीज में, नया नया फर्क और मुझे समझ में आ गया था, तो मैं उनको बड़े दिल से बताती थी, वो मैं आपको भी बता देती हूँ। देखने की बात ये थी कि अगर ये एक ही हैं तो कभी तो इस शिवलिंग पे इनकी फोटो बना देनी चाहिए। जब ये एक ही हैं तो इनके ऊपर इनकी फोटो बना दो, अलग से मूर्ति क्यों रखी हुई है, इनको ह्यूमन बीइंग के रूप में क्यों दिखाया गया। यहां ये बात समझ में आई कि भगवान ने हमारे सामने एक लक्ष्य रखा है कि आपको इनके जैसा बनना है। तो ऐसे कुछ भी सुपर ह्यूमन जो जो जहां जहां भी हुए हैं, जिस देश में, जिस संप्रदाय में, जिस धर्म में, ये भगवान ने हमेशा एक उदाहरण की तरह उनको यूज किया कि आपको इनके जैसा बनना है। चाहे वो हजरत मोसेस हुए, ईसा हुए, मोहम्मद हुए, जितने भी अच्छे अच्छे लोग हुए उस धर्म को आगे बढ़ाने वाले, तो गॉड की तरफ से ये इशारा जरूर था कि इन जैसा बनना है, फरिश्ता बनना है। तो मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि इनके जैसा बनना है। लेकिन आप सोचो कि अचानक रात को सपने में भी ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जाए या घर में दिखाई दे जाए, सिर्फ इमेज दिखाई दे जाए, नीले रंग का आदमी, और सोचो डर लगता है, कोई प्यार नहीं जागता, गले में सांप, और तीसरा नेत्र भी बड़ा जगमगाता, खुली जटाएं और उसमें से भी पानी निकल रहा है, और चंद्रमा भी है और त्रिशूल भी है और सांप भी है, तो देखते डर लगता है। सोचो ऐसा बनने के लिए कहा गया तो इसके पीछे कोई कारण होगा ना। जिनके पास सुंदर सुंदर कपड़े हैं, बांसुरी है, मोर मुकुट है, बेहद खूबसूरत गहने हैं, सुंदर कपड़े हैं, वो हैं देव, देवता, देवी। और जिनके पास ना तो सुंदर कपड़े हैं, ना मोर मुकुट है, ना हार है, ना गहने हैं, ना कपड़े, उनको कहा गया महादेव। कुछ तो कारण होगा, दे आर सिंपल देव और ये महादेव, जिनके पास कुछ भी वैसा नहीं है जो उनके पास है। तो महादेव बनने का तरीका क्या होगा फिर? और यहां आप वही बनने के लिए आए हैं, महादेव ही बनने के लिए आए हैं। थोड़ा सा आसान नहीं है, क्योंकि वो भी तपस्या कर रहे हैं, ऐसे साधना में बैठे, और वो राजयोगी है जो वो कर रहे हैं, क्योंकि वो आत्मा समझ के ही किया जाएगा। इतना एकांत में, बर्फ में, ऊंचे पहाड़ पर बैठकर सिर्फ निर्वस्त्र दिखाने का मतलब है कि मैं आत्मा बिना वस्त्रों के आई थी। तो निर्वस्त्र दिखाने का मतलब मैं आत्मा अलग हूं और ये शरीर अलग है, ये समझकर हम राजयोग करते हैं। तो ऐसा करने से ही महादेव बन सकते हैं। फिर यहां चंद्रमा कभी नहीं होता, आसमान में दिखता है चंद्रमा, शीतलता की निशानी है। वो है या नहीं है हमें मालूम नहीं है, लेकिन निशानी चंद्रमा दिखाया जाता है शीतलता की। तो यहां ही शीतल होना जरूरी है कि नहीं? आपको रोज यहां सिखाया जाएगा ओम शांति, मतलब शीतल और शांत हो जाइए। ये जो गुस्सा आ रहा है, जो टेंशन होती है, ये जो प्रैक्टिस है ना, इस तरह की चिड़चिड़ेपन की फीलिंग आना, परेशान होना, दुखी हो जाना, चिंतित होना, ये सारी यहीं छोड़कर जानी है। साथ में आप लेके नहीं जाएंगे जहां से आप आए, यूएई एंड कहां कहां से आप आए हैं, वहां लेकर नहीं जाना, यहां छोड़ेंगे, यहां से अपने आप वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए चंद्रमा यहां लेकर जाना है, मींस शीतलता, बिल्कुल आइस फैक्ट्री, नो रिएक्शन। पहले बात सुन तो लो, समझ तो लो, थोड़ा चुप हो जाओ। तो इसीलिए यहाँ आइस फैक्ट्री लगा के रखनी है, यहाँ पर चंद्रमा हमेशा धारण करके रखना है। पहले क्या आदत थी आप भूल जाएंगे, अगले के बोलने से पहले रिएक्ट करते थे, मैं जवाब तो दे दूं जरा, हाँ मुझे समझ आ गई तुम क्या कहना चाहते हो, चाहे समझ आई ना हो। तो ये जो रिएक्शन का संस्कार है ये छूट जाएगा अगर यहाँ चंद्रमा रहेगा। तो जटाओं में गंगा जो है वो प्योरिटी की निशानी है, प्योरिटी माना बच्चों जैसी मासूमियत। ये परमात्मा हमें बनाना चाहता है महादेव जैसा, जो अपनी जटाओं में गंगा धारण करके रखे, मींस प्योरिटी धारण करके, सिर के शीर्ष भाग में इतनी प्योरिटी हमारे अंदर होना जरूरी है। और इसका बहुत गहरा मतलब है, प्योरिटी मीन्स के जहां इम्प्योरिटी है वहीं से आपको तकलीफ आना शुरू हो जाएगी, वहीं से आप दुखी होना शुरू हो जाएंगे। इम्प्योरिटी चाहे झूठ बोलने की है, चाहे बातों को छुपाने की है, चाहे इसमें उसमें इसमें शॉर्टकमिंग्स ढूंढना, नुक्स निकालना, है ना, चाहे ये भी, ऑल आर इम्प्योरिटी। एक बार झूठ बोलकर भी आपको याद रखना पड़ता आपने किसको क्या बोला था, और सच बोलने वाले को कभी नहीं याद रखना पड़ता क्योंकि उसने वही बात बोलनी है बार बार। अब मैंने इनको कह दिया कि मैं फलां जगह से आई हूं, फिर याद रखना पड़ेगा कि इनके सारे साथियों को भी यही कहना है कि मैं फलां जगह से आई हूं और मैं आई कहीं और से हूं। तो कितना याद रखना पड़ता है कि कहां ये बोलना है कहां ये बोलना है। तो ये इम्प्योरिटी है जो तंग करती है, परेशान करती है। तो वो सारे विकार है, काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस सारे से रिलेटेड थॉट्स इम्प्योरिटी जैसे ही खत्म हो जाती है तो यहां से गंगा बहनी शुरू हो जाती है। तो महादेव बनना इजी काम नहीं है, लेकिन भगवान ने फिर भी कहा है कि राजयोग से तुम्हें महेश्वरा महादेव ऐसा बनना है। फिर गले में सांप, गले में सांप दिखाने का मतलब है आपके बिल्कुल आसपास ही रहेंगे ऐसे लोग, नेगेटिव पर्सनैलिटीज, तंग करने वाले, डसने वाले, है ना, जिनको देख के आपको डर भी लगता रहे, आप परेशान भी होते रहे, ऐसे लोग तो रहेंगे ही, उनको कहाँ छोड़कर देंगे। आप ऑफिस में देखिए, प्रोफेशन में देखिए, सोसाइटी में देखिए, घर पड़ोस बाहर भीतर सब जगह हैं, ज्यादा नहीं तो थोड़े हैं, कोई दो चार हैं तो सही, सबके पास है ना ऐसे लोग, सब ठीक है, बस ये बंदा ना जरा ऐसा लगता है ना किसी को देखकर। तो ये जो सांप जैसे लोग हैं, यही आपके गले का श्रृंगार बने हुए हैं, मींस के इनकी वजह से आप कहलाते हैं महादेव। अगर ये नहीं हो, आपने रामायण की कहानी सुनी है ना, वो दशरथ राजा, उनका बेटा राम, दशरथ ने सोचा मैं राम जी को वो दे दूं, राज तिलक दे दूं, राजगद्दी पर बिठा दूं, और उन्होंने उसको राज तिलक दे दिया, राजगद्दी पे बिठा दिया, दैट्स ऑल, कहानी खत्म, रामचरितमानस खत्म हो गई ना। फिर तो इतनी बड़ी रामचरितमानस किसके कारण बनी, वो सिर्फ राजा राम होते, भगवान राम, देवता राम नहीं होते। फिर वो जो देवता राम बना वो किसके कारण बना, मंथरा के कारण। कैकेयी, पहले तो वह बना ना मंथरा, कैकेयी, खर, दूषण, सूर्पनखा, रावण तो और उसके बाद आता है करेक्टर, है ना, रावण, इन सब ने मिलके उनको देवता राम, और इतना बड़ा रामचरितमानस उनके कारण बना। राजा दशरथ ने राजकाज दे दिया, उन्होंने राज कर लिया, बात खत्म। वो कहे जी दो वर लेने, इसको वनवास भेजो, वो कहे मैं क्यों जाऊं, मेरा तो हक बनता है राजगद्दी पर, खत्म हो जाती कहानी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो भगवान राम की तरह चमके ही तभी, अंधेरे में बल्ब चमकता है ना, रोशनी में उसकी क्या वैल्यू है, जहां सारे अच्छे हैं वहां अच्छे की क्या वैल्यू है, जहां सांप जैसे लोग हैं फिर भी आप उनके साथ एडजस्ट कर रहे हैं तब आप महान हैं, आप अच्छे हैं। तो महादेव बनना तभी पॉसिबल है, राजयोग वहीं पर ही काम आता है। फिर हाथ में त्रिशूल, त्रिशूल में तीन शूल दिखाते हैं, तीन शूल दिखाने का मतलब है कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों का क्लियर ज्ञान उनकी बुद्धि में है। जो आज आपको मिला हुआ है, अच्छी शक्ल सूरत, अच्छा शहर, अच्छे माँ बाप, अच्छे बीवी बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छी नौकरी, अच्छा स्वास्थ्य, ये किस चीज का रिजल्ट है, आपके पास्ट के अच्छे कर्मों का रिजल्ट है। आप यहां आकर बैठे हैं इतने सुंदर शांत पवित्र स्थान पर, ये भी आपके अच्छे कर्मों का रिजल्ट है। तो जो अब मिल रहा है वो मेरे पास्ट के कर्मों का रिजल्ट है, उसके अनुसार जो आप कर रहे हैं वो आपका फ्यूचर बनता जाएगा। तो जो मुझे मिला है उसमें नो कंप्लेंट, ये आपको आपके करेक्टर को, आपकी पर्सनैलिटी को नेगेटिविटी से बचाने का तरीका है। नेगेटिविटी से पर्सनैलिटी बची रहेगी तो आपकी पर्सनैलिटी चमकदार होगी और आप महादेव बन जाएंगे। तो त्रिशूल अपने हाथ में रखना है, त्रिशूल मीन्स कर्म सिद्धांत का पूरा ज्ञान, जो पास्ट में किया वो अब मिल रहा है, जो अब करूंगा या करूंगी वो आगे मिलेगा। तो उस अनुसार आपके हर कर्म की वीडियो बन रही है और वो आपको दिखाई जाएगी, दिखती भी है, अकेले में एकांत में दिखती तो है ना, पता तो चलता है कि मेरे इस कर्म का रिजल्ट मुझे ये मिल रहा है। किसी से भी छुपा सकते हैं, लेकिन ये जो अपनी आंख है ना, इससे नहीं छुप सकता। क्योंकि जैसा ही करते हैं यहाँ रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है, कुछ भी आप करने लगते हैं यहाँ रिकॉर्डिंग होने लग जाती है, हर सांस की, हर थॉट की रिकॉर्डिंग होती है। तो त्रिशूल मेरे बचाव का तरीका है, वो मुझे श्रेष्ठ कर्म करने की तरफ प्रेरित करता है। तो बनना है महादेव, कहा है परमात्मा ने, नाम है उनका शिव। शिव का डिक्शनरी मीनिंग है कल्याणकारी, शिव का डिक्शनरी मीनिंग है शून्य, तो वो शून्य है, शिव है, कल्याणकारी है। उसने हमें प्रेरणा दी है कि जो तुम कहते हो ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, इनके जैसे तुमको बनना है। तो ये उस शिव कल्याणकारी ने ही कहा है, और उनके लिए शब्द बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य मीन्स अविनाशी, जो बार बार अपना रूप नहीं बदलता है, उसे हम सत्य कहते हैं। शिवम अर्थात कल्याणकारी, सुंदरम अर्थात एवर प्योर, प्योर ही सुंदर होता है। आपने छोटे बच्चे देखे होंगे ना, 2 साल 3 साल 4 साल तक के बच्चे, उनको जाना पड़ता है ब्यूटी पार्लर में अपने आप को सजाने के लिए। थोड़ा सा हंसते हैं, स्माइल करते हैं, गालों में गुलाब खिलते हैं उनके, नेचुरल ग्लो, नेचुरल सुंदरता उनके पास होती है। और इधर हजारों रुपए खर्च करके ब्यूटी पार्लर में सज धज के आए और कोई थोड़ी सी बात चुभने वाली कह दे, सारा मेकअप फेल, मुंह लटका हुआ ऐसे हो जाता है, सारी सुंदरता खत्म हो जाती है। क्योंकि सुंदरता बढ़ती है मुस्कुराने से, डिविनिटी से, प्योरिटी से बढ़ती है। तो सुंदर वो है जो प्योर है, तो जब तक प्योरिटी है तब तक सुंदरता है। तो इसीलिए भगवान के लिए बात कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, उसके सामने सारी सुंदरता फेल है। वो हमारे सामने एग्जाम्पल दे रहे हैं महेश्वरा महादेव बनने का, और जब आप यहां से जाएंगे वैसा बनकर ही जाएंगे। इतनी दूर से आप घूमने थोड़ी आए हैं यहाँ, वो तो मैं वैसे ही पार्ट है, मिल जाएगा थोड़ा थोड़ा घूमने को। तो आप यही जानने, अपने आप को झिंझोड़ने, अपने आप के लिए, अपने अंदर की यहाँ की सेटिंग करने के लिए आए हैं यहाँ, तो इसीलिए ये बहुत विशेष बात है। तो अब गंगा प्योरिटी की निशानी, चंद्रमा शीतलता की निशानी, गले में सांप, नेगेटिव पर्सनैलिटीज के साथ भी रहते हुए, एडजस्ट करते हुए, सहन करते हुए आप मुस्कुराते रह सके, वो आपके गले का हार बन जाए, आपकी ब्यूटी को बढ़ाएंगे, तो ये उनकी निशानी है। त्रिशूल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों कालों का संपूर्ण ज्ञान, जिसकी वजह से मैं हमेशा खुश रह सकूं, मुझे कोई कंप्लेंट ना हो किसी से, मुझे ऐसा क्यों मिला, मुझे ऐसे बच्चे क्यों मिले, मुझे ऐसा पति क्यों मिला, मुझे ऐसे लोग क्यों मिले, ऑफिस में ऐसे लोग क्यों मिले। ये मिले नहीं हैं, ये आपकी कमाई है, ये आपने अर्न किए हैं, इनके साथ आपने हिसाब किताब बनाया है, इसलिए मिले हैं ये, तो ये कमाई है, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो बिचौलिया होता है ना जो शादी कराता है, बीच में रिश्ते लाता है, संबंध जोड़ता है, आजकल तो बहुत सारा .com चलता है, तो पहले बिचौलिए होते थे, तो वो क्या करते थे, जब भी पति के साथ बनती नहीं है, पति पत्नी के आपस में बनती नहीं, तो सारी जिंदगी उस बिचौलिए को गालियां निकालते हैं, तूने करवाई, तूने ऐसा, तूने ढूंढा, तूने ये, तूने वो, जबकि उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, जो ये बात सुनते आ रहे थे ना कि जोड़े ऊपर से बन के आते वो ऊपर से ही बन के आए हुए हैं। अच्छा, उसमें आप उसका दोष निकाल देंगे, कंप्लेंट करेंगे, लेकिन बच्चा, बच्चे तो आपने पैदा किए हैं, बच्चे तो आपके हैं, तो उनके साथ देखो, कभी पैदा होते मेंटली रिटार्डेड हैं, स्पेशल चाइल्ड हैं, है ना, आईक्यू स्लो है, या बीमारियां लगी हुई हैं, या हाथ पैर नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। तो अब अपने बच्चों को देखो जरा, कितने अच्छे हैं ना वो, सब कुछ है उनके पास, कितने अच्छे हैं वो। तो इसीलिए कहीं कंप्लेंट की मार्जिन है ही नहीं, क्योंकि ये सब मेरी कमाई है। ये बात याद रखेंगे तो खुश रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि परमात्मा पिता ने हमें बिल्कुल क्लियर बता दिया कि मैं ही तुम्हें देने वाला हूँ, इसीलिए कनेक्शन मेरे साथ ही रखना है, मेरे साथ ही कनेक्शन जोड़कर रखना है। हम बीच बीच में भटक जाते हैं, थोड़ा थोड़ा और कहीं कहीं कनेक्ट हो जाते हैं। वो वैसा होते हैं जैसे 5-6 ब्लाइंड्स थे, नसूरदास नैनहीन, उनको पूछा गया हाथी कैसा होता है, उनके सामने बड़ा सा हाथी खड़ा कर दिया गया। अब उन्होंने हाथी कभी देखा नहीं था, देखना मीन्स ब्लाइंड कैसे देखते हैं, टच करना, फील करना, अब उन्होंने तो नहीं देखा था। तो अब एक आगे गया और उसने उसकी सूंड पकड़ ली, सुनी हुई आपने बचपन में कहानी ये, तो ऊपर से नीचे तक हाथ लगा के देखा और उसने वैसी कोई चीज देखी थी। देखते कैसे हैं वो, वही तीसरे नेत्र से। ये तो अजगर जैसा है, क्या चीज, सूंड, हाथी की ट्रंक। दूसरा कहता नहीं नहीं ये सब झूठ, ये तो झूठ बोल रहा है, ये देखो हाथी तो ये है, ये उसने बड़ा सा कुछ पकड़ रखा है पिलर, ये तो खंबे जैसा है, उसने उसके टांग पकड़ ली, लेग पकड़ ली। तीसरा कहता नहीं नहीं ये सब गलत बता रहे हैं, दोनों गलत बता रहे हैं, ये देखो हाथी तो, ये देखो हिल रहा है, ये तो पंखे जैसा है, उसने उसका कान पकड़ लिया। और वो कान इतना ही होता होगा हाथी, इससे बड़ा थोड़ी होता होगा, अब उसे क्या पता हाथी कितना बड़ा होता है। एक ने उसकी पूंछ पकड़ ली और ऊपर नीचे हिला के देख के, रस्सी जैसा ही है ये तो हाथी इतना ही होगा ना, पता नहीं कितना है हाथी, उन्होंने पूरा हाथी तो देखा ही नहीं। एक थोड़ा लंबा था, वो उसकी बॉडी पर हाथ फिराता रहा और उसने कहा हाथी तो दीवार जैसा है, थोड़ी नरम दीवार जैसा, खुरदरी सी नरम सी दीवार जैसा, तो वो बॉडी पर हाथ फेर रहा था। सबके सब सच बोल रहे थे, टच करके, फील करके, एक्सपीरियंस करके बोल रहे थे ना, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि सारे ऑर्गन्स मिलकर हाथी बनता है। ये जब आंखें सही होंगी तो मालूम पड़ेगा कि हाथी इतना बड़ा होता है कि एक एक अंग को हाथी नहीं कह सकते हम। ऐसे ही हमारा हाल था, हमने भगवान जैसा कोई गुण किसी में देखा, कोई गुण किसी में देखा, कोई गुण किसी में देखा, हाँ यही भगवान है, यही भगवान है। डॉक्टर ने जान बचा दी, बहुत प्यार से बोलता है, बहुत सहानुभूति है, डॉक्टर साहब आप ही मेरे लिए भगवान है, माँ ही भगवान है, बिल्कुल जब बिल्कुल डिपेंडेंट है, बिल्कुल डिपेंडेंट, उस वक्त वो उसको पाल रही है और बढ़ा रही है, तो वही भगवान है ना। तो जो मुसीबत के समय काम आ गया वही भगवान है, क्योंकि भगवान मुसीबत में याद करने की चीज है बस। तो जिसने जैसा समझा, जैसा फील किया, उसने अनगिनत भगवान बना लिए। कभी किसी को भगवान कहा, कभी किसी को भगवान कहा, तो भगवान को आकर कहना पड़ता है कि मैं अति धर्म ग्लानी के समय ही आता हूँ। अति धर्म ग्लानी के समय, जब बहुत बहुत हालत खराब हो दुनिया की, जब सब आ आ के अपना उपदेश दे चुके, समझा चुके, तुमने किसी का भी कहना नहीं माना, उस वक्त मैं समझाने आता हूँ। और जब आता हूँ तो नेचुरली वो छोटी सी बात नहीं बताएगा जो सब बता चुके हैं कि फला प्रेयर कर लो, फला ये कर लो, ऐसा कर लो, इससे ठीक हो जाएगा, नहीं, वो बड़ा लक्ष्य देगा। और बड़ा लक्ष्य है महादेव महेश्वरा शंकर समान बन के ही उठना है यहाँ से, ठीक है, नहीं तो आपकी छुट्टी बंद। यहाँ से आप तभी उठेंगे जब यहाँ चंद्रमा फील होने लग जाए, जब अंदर से प्रतिज्ञा आ जाए कि नो रिएक्शन। आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे। यहाँ ये ज्ञान सरोवर है, उस वक्त पांडव भवन आपने देखा होगा या देखेंगे आप एक दो दिन में। तो पांडव भवन ओरिजिनल हेडक्वार्टर है, जहाँ ब्रह्मा बाबा जहाँ रहते थे उनका कमरा है, उनकी झोंपड़ी है, कुछ कुछ उसमें अल्टरेशंस किए हैं ताकि उसमें बैठकर मेडिटेशन कर सके। ओरिजिनल वैसा नहीं था, ओरिजिनल और भी साधारण था, वो बहुत साधारण और सिंपल झोपड़ी थी, बहुत साधारण कमरा था बाबा का, जो पानी बरसता था तो बहुत जगह पानी गिरता था, ऐसी ऐसी हालत थी। तो ऐसा ही वहाँ हिस्ट्री हॉल है, तो उसमें हॉल में और मेडिटेशन हॉल बना था वहाँ, तो वहाँ ये शिविर होता था जो आपका यहाँ हो रहा है, ऐसा शिविर वहाँ होता था। तो शीलू दीदी शिविर कराती थी वहाँ, तो वहाँ पर सबने शिविर किया, ना शांतिवन था, ये बात है लगभग 96-97 की बात है। तो हमारे शहर से, चंडीगढ़ से एक बड़े ऑफिसर वो यहाँ आए और वो कोर्स करके गए, शिविर करके गए। अब जब मेडिटेशन कोर्स किया तो उसमें बार बार ये शब्द हर क्लास में आते ही, ओम शांति, खत्म करते समय ओम शांति, फिर ओम शांति का मतलब समझाया कि मैं शांत आत्मा हूँ, और सारे पाठ, जितने पाठ पढ़ाए गए उसमें ये बात तो खास होती थी कि नो रिएक्शन, गुस्सा नहीं, शांत रहना है, कभी महादेव बनना है तो कभी देवी बनना है, तो कभी इसको ठंडा रखना है, हर लेसन में कुछ ना कुछ तो ऐसा था। तो ये बात सुनते सुनते उनको समझ में आ गया कि रिएक्ट करने से नुकसान तो अपना ही है, और अंदर ही अंदर प्रतिज्ञा कर ली उन्होंने कि अब मैं बिल्कुल शांत होके जाऊंगा, ओम शांति, शांति मेरा स्वधर्म है। ये सोचकर उन्होंने जाके वहां किसी भाई से मिले, कभी जैसे आप यहाँ मिलते हैं ना, बहुत सारे भाई बहन घूम रहे होते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस सुनाते हैं, यहाँ खाना अच्छा है, यहाँ ये अच्छा है, रहने का इंतजाम अच्छा है, ऐसे ही उसने भी अपना एक्सपीरियंस सुनाया किसी के साथ, यहाँ जब से आया हूं ना मेरा गुस्सा बिल्कुल छूट गया है। तो वो भाई उनको कहता, भाई साहब, वो बड़ा ऑफिसर था, आईएएस ऑफिसर थे, कहते भाई साहब गुस्सा छूटा नहीं है, एक्चुअली गुस्सा करने का मौका नहीं मिला आपको। किस पर गुस्सा करेंगे, बीबी नहीं है, बच्चे नहीं है, वो तो आप छोड़कर आए। तो यहाँ सब कहना मानते हैं, सब प्यार से खाना खिला रहे हैं, सब शांत हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं, अच्छी क्लास, अच्छा खाना, अच्छा रहने का प्रबंध, गुस्सा किस पर करेंगे। तो यहाँ गुस्सा करने का चांस नहीं मिला। ये तब पता चलेगा जब आप यहाँ से नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे आबू रोड रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, अपने शहर में जाएंगे, तब मालूम पड़ेगा। उसको लगा बात तो ठीक है, पर मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है। अब उनके साथ क्या हुआ, 96 की बात है, उन्होंने जाके फिर चंडीगढ़ में अपना एक्सपीरियंस सुनाया, वो एक्सपीरियंस ही सुना रही हूं मैं आपको। तो उन्होंने जाके बताया, कहता मैं जैसे आबू रोड रेलवे स्टेशन पर उतरा, पहुंचा, तो यहां से गाड़ी ने छोड़ दिया, सभी जा रहे थे वहां। उस दिन कुली जो थे, कुलियों की हड़ताल थी, कुली भार उठाने वाले, और वो भाई साहब बड़े ऑफिसर थे, उनको इतना वेट उठाकर चलने की आदत भी नहीं थी, लगभग 58-59 एज थी, पर नहीं उठाते थे वेट इतना। तो एक बड़ी सी अटैची थी, उस समय रिवॉल्विंग नहीं होती थी अटैची केस, वो सफारी VIP ऐसा कुछ मोटी सी थी, भारी सी अटैची केस, सूट केस। फिर उसके ऊपर एक छोटा सा बेडिंग था, उनको नहीं पता था यहाँ वेल फर्निश्ड बढ़िया रूम्स मिलेंगे, ब्लैंकेट चद्दर सब मिलेगा, तो वो अपना छोटा सा बेडिंग भी लाए थे, फिर एक बैग भी लाए थे, उसमें कुछ खाने पीने का कुछ और सामान होगा। तो ऐसा तीन आइटम उनके पास थे, और तीनों उठाने में वो असमर्थ थे, इनकैपेबल थे। तो वो इधर उधर ढूंढ रहे थे, कुली तो है नहीं, क्या करूं। वो दूर उनको ना स्टोर में, रेलवे का जो स्टोर था वहां, वो बड़े बड़ी पेटियां उठाने वाले मजदूर दिखाई दिए, लेबरर्स दिखाई दिए। तो उसने उस लेबरर को जाके कहा, एक लेबर को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मेरा थोड़े से दो तीन आइटम है, उठा के वो नग उठा के चलोगे आप दो नंबर प्लेटफॉर्म तक। तो उसने देखा और कहा पूरे 60 रुपए लूंगा, एक एक नग के 20-20 रुपए, जबकि ज्यादा थे उस जमाने के हिसाब से, उस समय के हिसाब से, पर इनको तो उठवाना ही था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं 60 रुपए दूंगा, और वो आ गया। अब वो भाई साहब, वो जवान था कुली, तो उसको, उसके ऊपर झुक के वो बता रहे थे, ये मेरा अटैची है, ये मेरा बैग है, ये मेरा बेडिंग होल्डाल है, ऐसा बता रहे थे। तो वो उठा के ऐसे सीधा हुआ, और उसका सिर, मजबूत सिर, वो ऑफिसर के नाक पे और यहां पे लगा बड़ी जोर से, चश्मा टूटने जैसा हो गया, बच गया, नाक पे बड़ी जोर से लगा, बड़ा गुस्सा आया, बड़ा बिलबिलाया, तड़फा, दर्द हुआ। ओम शांति, मुझे शांत रहना है, गलती मेरी थी, मैं दूर से भी तो बता सकता था, मैं उसके ऊपर झुका क्यों हुआ था, मैं नहीं उसको कुछ नहीं कहूंगा, ऐसे सोच के उन्होंने अपने बेचारे ने सहलाया, ठीक किया और उसके पीछे पीछे चल दिया। अब वो जवान था, उसकी स्पीड तेज थी। अच्छा, फिर दूसरा कुली के पास ना कपड़ा होता है, वो ऐसे गोल गोल करके रख के फिर उस पर सामान रखते हैं, वो था पलदार, लेबरर था, तो पीठ पर बोझ उठाने वाला था वो, उसके सिर पे रखने का कोई कपड़ा कुपड़ा नहीं था, तो उसने वैसे ही अटैची केस सूटकेस रख लिया, वैसे ही उसके ऊपर वो रख लिया और वो तेज तेज चल रहा था। जैसे कर्व आया, मुड़ने लगा, जो भाई साहब हमें समझा रहे थे, मेरे वो सीन बन रहा था, बैग की जो बेल्ट थी ना वो बहुत लंबी थी, वो बैग झूम के झूल के पीछे आने वाले भाई साहब के यहां पे लगा बहुत जोर से, और जैसे ही लगा वो गिरने को हुए, उन्होंने रेलिंग पकड़ ली अपनी स्टेयर्स की और मुश्किल से जान बचाई और बहुत गुस्सा आया। ओम शांति, मुझे गुस्सा नहीं करना, क्योंकि मैं गुस्सा छोड़कर आया हूं, मैं शांति लेकर आया हूं, ये मेरी गलती थी, मैं इसके पीछे चिपक कर क्यों चल रहा हूं, मुझे थोड़ा दूर होकर चलना चाहिए, ऐसे उन्होंने सोचा। चलो दूसरी बार भी गुस्सा पी लिया या थूक दिया, जो भी था, मतलब रखा नहीं यहां पर। अब वो वहां जाके उतारने लगा सामान, सेकंड नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंच के बैग उतारा, ऊपर से बेडिंग को हाथ उथ लगाया, वो भी फिसल गया, नीचे गिर गया, चलो टूटने वाली चीज नहीं थी। वो सूटकेस का हैंडल समझ नहीं आया, वो हाथ लगाते लगाते सूटकेस भी फिसल गया, और फिर अगेन जो फिसला तो भाई साहब बिल्कुल पास खड़े थे, और उनके वो यहां पे इतनी बुरी तरह चोट मारता हुआ सूटकेस नीचे गिरा। सूटकेस तो मजबूत था, बच गया, बट कंधा मजबूत नहीं था, उसके बड़ी जोर से चोट लगी, और अब तो वो लेबरर भी डर गया, तीन बार मैंने इस बंदे को मारा, और वो गुस्सा आया उनको भी, फिर तीसरी बार भी उन्होंने बड़े प्यार से खुद को समझाया, ओम शांति, मुझे शांत रहना है, अपने मन को कहता, उन्होंने जो स्टाइल से हमें बताया कि मैंने समझा मेरा ही कसूर है, मैं भी तो दूर खड़ा हो सकता था ना, मैं इसके पास ही क्यों खड़ा हूं, तो ऐसे सोच के उन्होंने कहा कितने पैसे, उसने कहा 60 रुपए। साहब आप तो देवता है साहब, तीन बार मार खा के भी 60 रुपए दे रहे आप सोचिए। उन भाई साहब ने जो बात बताई वहां क्लास के बीच में, कहते कि मैंने सिर्फ तीन बार सहन किया, टॉलरेट किया, और वो भी खुद को समझा समझा के जबरदस्ती, उसने मुझे देवता कह दिया। मैं सोच रहा था अगर मैं सचमुच सहनशील बन जाऊं तो मैं देवता बन ही जाऊंगा, ये मुझे पक्का विश्वास हो गया। अब आप सोचिए कि इसी तरह के बहुत से एक्सपीरियंस आपके साथ भी जुड़ेंगे, जब आप कुछ ना कुछ देवता या महादेव बनने का संकल्प लेंगे तो कोई ना कोई मजदूर आपको भी ऐसा मिल जाएगा। घर में टेस्ट लेने वाले तो पग पग पर हैं, आपका पेपर लेने वाले, टेस्ट लेने वाले कदम कदम पर हैं, आपको ही सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, हर टेस्ट में पास होना है और डेली होना है, डेली टेस्ट होंगे, डेली पास होना है, तो इसमें सहारा सिर्फ एक है, मैं निराकार ज्योति, उस निराकार ज्योति से चार्ज हो रही हूं, सुप्रीम शिव बाबा मेरा पिता, मेरे उससे परमानेंट रिलेशन है, बाकी सबके साथ रिलेशंस बदलते रहते हैं, बदल बदल के मिलते हैं हम, कपड़े बदल बदल कर मिलते हैं, लेकिन उसके साथ परमानेंट रिलेशन है। अब उस रिलेशन का थोड़ा सा आनंद लेंगे हम, 10 मिनट एकदम टिक कर बैठेंगे और बड़ा अच्छा मेडिटेशन करेंगे, खुद को याद कराएंगे कुछ चीजें, एकदम स्थिर हो जाएं। पहले हम अपने स्वरूप में टिकेंगे, या तो चौंकड़ी लगाकर बैठें या दोनों पांव जमीन पर लगा दें। इधर भी खाली है बहन जी, इधर भी बैठ सकते। या चौकड़ी लगा ले या जमीन पर दोनों पांव लगा ले, ऐसे क्रॉस लेग और ऐसे नहीं बैठना है, लेग्स टच करके नहीं। अलर्ट, जागृत, महसूस करेंगे मस्तक में चमकता हुआ मैं शांत और शक्तिशाली आत्मा हूं। अपने मन बुद्धि की आंखों को खुला रखेंगे, उसमें एक सुंदर सीन आप देखेंगे, वो दृश्य एकदम देखते जाएं अपने मन बुद्धि के टीवी पर, स्क्रीन पर। आप एक ऊंची पहाड़ी पर अकेले बैठे हैं, धीरे धीरे आप उस पहाड़ी से नीचे आते हैं, आपके चारों तरफ आपकी ही लाइट का घेरा बना हुआ है। आप अपने लाइट के ऑरा में हैं, नीचे आते हैं और नीचे आते हैं। पहाड़ से नीचे आकर एक सुंदर साफ पानी की झील के किनारे बैठ जाते हैं। क्रिस्टल क्लियर वाटर इन द लेक। आपने एक छोटा सा पेबल उठाया, यू टुक ए पेबल एंड यू जस्ट put in the water, ripples in the water, watch the ripples in the water, slowly, gradually, the water is still now, ripples are stable, लहरें शांत होती जा रही हैं, पानी फिर से स्थिर हो गया, आपका मन भी स्थिर हो गया। उस ठहरे हुए पानी को ध्यान से देखें, आसपास के पेड़ पौधे और बादलों का रिफ्लेक्शन उसमें दिखाई दे रहा है। बी मोर कॉन्सेंट्रेट। अब उस ठहरे हुए पानी में आप अपना फेस देखते हैं। जब आप अपना चेहरा देखते हैं तो आपको पेड़ पौधे और बादलों का रिफ्लेक्शन दिखाई देना बंद हो जाता है। और एकाग्र हो जाएं। पानी के बॉटम में एक चमकती हुई ऑब्जेक्ट रखी है। अपने मन की आंखें खोल कर बैठें। एक सीन देखते रहें। जब आप उस शाइनिंग ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आपको अपना फेस भी दिखाई देना बंद हो जाता है। वो चमकीली चीज एक शाइनिंग डायमंड है। धीरे धीरे ऊपर आता है और ऊपर आता है। ध्यान से देखें, आपके मस्तक के बीच स्थित हो जाता है। Now see your face shining diamond studded in the middle of your forehead and you are surrounded by peaceful vibrations. You are surrounded by shining aura. महसूस करें। मस्तक के बीच चमकता हुआ हीरा, जैसे मस्तक पर तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, ऐसे मस्तक के बीच हीरा जगमगा रहा है। अपने आप को कह दें, ये मैं शांत आत्मा हूँ। शांति के सागर का बच्चा हूँ। I am peaceful soul, son of the ocean of peace. Say yourself, nothing can disturb me. No one can disturb me. I am peaceful soul. मैं शांत आत्मा हूँ। शांति के सागर की संतान। अब इसी शांत स्थिति में धीरे से सभी खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाएंगे। अपना राइट हैंड अपने सीने पर रखेंगे। थैंक्स गॉड, सब कुछ दी बेस्ट देने के लिए। शांति, सुख और प्रेम देने के लिए। शुक्रिया बाबा, मुझे महादेव समान बनना ही है। मैं शांति के सागर की संतान, शांत आत्मा हूँ। शुक्रिया बाबा, थैंक्स प्रभु।